ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लोगों को अनेक विकास परियोजनाएं समर्पित की। श्री मोदी ने यमुनानगर में 90 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गोबरधन संयंत्र की आधारशिला रखी तथा रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया।
विकसित भारत के निर्माण में बिजली की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और हमारी सरकार बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चौतरफा काम कर रही है। चाहे वन नेशन वन ग्रिड हो, नए कोल पावर प्लांट हो, सोलर एनर्जी हो, न्यूक्लियर सेक्टर का विस्तार हो, हमारा प्रयास है कि देश में बिजली का उत्पादन बढ़े।
इससे पहले कल सुबह प्रधानमंत्री ने हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल की आधारशिला रखी तथा हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने वक्फ कानून में किए गए परिवर्तनों का समर्थन करते हुए कहा कि इनसे गरीब मुस्लिमों को लाभ होगा और जनजातीय भूमि को संरक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से चयनित स्टार्टअप क्यूएनयू लैब्स ने कल विश्व क्वांटम दिवस पर दुनिया के पहले प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड का शुभारंभ किया। ये उद्यमों को अपनी महत्वपूर्ण अवसंरचना संरक्षित रखने में सशक्त बनाता है। ये क्लाउड, ऑन प्रिमाइसेस या हाइब्रिड सहित निर्बाध क्रिप्टोग्राफी प्रबंधन को भी सक्षम बनाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि क्यू शील्ड कॉस्मोस सुरक्षित कनेक्टिविटी के लिए क्यू कनेक्ट और सुरक्षित समन्वय के लिए क्यू वर्स जैसी विभिन्न सेवाओं की भी सुविधा देता है। भारतीय जनता पार्टी ने मुर्शिदाबाद में हुई घटना पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। राज्यपाल को लिखे पत्र में प्रदेश पार्टी अध्यक्ष डॉ. सुकांत मजूमदार ने घटनाक्रम का विस्तृत ब्यौरा देते हुए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने लिखा है कि यह घटना केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि मानवीय संकट का मुद्दा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वक्फ संशोधन अधिनियम पर उनकी टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुश्री बनर्जी का पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम को लागू न किए जाने वाला बयान संविधान के विरुद्ध है। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल की दूसरी मंजिल पर कल रात भीषण आग लग गई, जिससे मरीजों और अस्पताल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। घटना के बाद उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख अय्यर अस्पताल पहुंचे। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 200 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा गया है।
लोकबंधु हॉस्पिटल में खिड़की तल पर धुआं देखा गया था, उसके बाद मरीजों को शिफ्ट करना प्रारंभ किया गया, सभी मरीजों को रेस्क्यू कर लिया गया, लगभग 200 मरीज थे और कोई हताहत नहीं हुआ है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ उसकी बातचीत का दूसरा दौर शनिवार को रोम में होने की संभावना है। इटली के विदेश मंत्री अंतोनियो तजानी ने घोषणा की है कि दोनों पक्षों और ओमान के आग्रह के बाद इटली बातचीत की मेजबानी पर तैयार हुआ है। ओमान इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का पहला दौर 12 अप्रैल को ओमान में हुआ था। दोनों देशों ने बातचीत को सकारात्मक और रचनात्मक बताया। हिमाचल प्रदेश आज अपना 78वां स्थापना दिवस मना रहा है। 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर राज्य का गठन किया गया था। इस वर्ष स्थापना दिवस समारोह चंबा जिले की जनजातीय पांगी घाटी के मुख्यालय किल्लार में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। इस अवसर पर राज्य की समृद्ध विरासत से जुड़े कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में आज मध्य प्रदेश और पंजाब आमने सामने होंगे। मैच उत्तर प्रदेश के झांसी में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। तीसरे और चौथे स्थान के लिए उत्तर प्रदेश और मणिपुर का मुकाबला शाम 5 बजे होगा। आईपीएल टी20 क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराकर लगातार 5 मैचों में अपनी हार का सिलसिला खत्म कर दिया। प्रतियोगिता में आज चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।